शिवी आर्य से मिलने के बाद हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। जिया अपने घर को चली गई थी, जबकि शिवी अभी तक घर जाने के बजाय लंदन की सड़कों पर दिशाहीन चल रही थी। वो आर्य के लिए परेशान हो रही थी। काफी देर चलने के बाद वो लंदन ब्रिज पर थी। जब वो चलते हुए थक गई तो ब्रिज के किनारे बैठ गई। कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया। जब भी तुमसे मिलती हूँ, तुम्हारा एक नया ही रूप देखने को मिलता था। वो इंडियाना में तुम्हारा एक सीट के लिए लड़ना, तो कभी मेरी छोटी सी चोट देखकर भी परेशान हो जाना, आधी रात को बच्चों की तरह अच्छा खाने की जिद करना और मुझसे मिलने के बहाने बनाना। पता नहीं सच जानने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, पर मुझसे नफरत मत करना। मैं तुम्हें एक धोखे में नहीं रखना चाहती थी और ना ही कोई झूठ बोलना चाहती थी। सब कुछ अचानक हो गया, बस होते चला गया, जैसे हमारी मुलाकात और अब तुम्हारा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना। शिवी घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर बैठी थी और अपने दिल की बात खुद से बयां कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। ये आर्य का कॉल था। शिवी ने कॉल पिक करके कहा, अभी एक घंटे पहले ही हम मिले थे, तुम्हारा क्या उस हॉस्पिटल बेड पर मन नहीं लग रहा जो मुझे कॉल कर लिया? उसकी बात सुनकर आर्य हल्के से हंसा और कहा, तुम घर पहुंच गई हो ना? बीमार तुम हो और परवाह मेरी कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्या, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर शिवी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कॉल कट मत करना, ध्वनि भी सो गई है और मैं बोर हो रहा हूँ। तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। हाँ कहा था, लेकिन ये भी नहीं बोला था कि तुम मेरे जाने के एक घंटे बाद ही कॉल कर लो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शिवी को डर था कि उसने ज़्यादा देर बात की तो वो रो देगी। देखो अब तुम मुझसे पीछा छुड़ा रही हो, ऐसा नहीं चलने वाला। आर्य को एली की याद सता रही थी। उसकी यादों से भागने का एकमात्र तरीका था शिवी से बात करना। वो नहीं चाहता था शिवी कॉल करे। आई रियली नीड यू, उसने भरी आवाज में कहा। ठीक है, मैं वापस हॉस्पिटल आ रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, बाहर बहुत ठंड है, तुम आराम से अपने रूम में बैठकर बात कर सकती हो। आर्य ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शिवी ने तब तक अपने लिए कैब बुक कर ली थी। क्या तुम अब तक बाहर हो? आर्य ने आसपास की बातें सुनकर हैरानी से पूछा। हाँ, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं बाहर ही थी। देखो अब ज्यादा सवाल मत करना, मैं आ रही हूँ मतलब आ रही हूँ। तुम्हारा ऑफिस होता है, कल अगर लेट पहुंची या तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्या? लगता है तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, तभी तुम इतना केयरलेस हो रही हो, आर्य ने पूछा। उसकी बात का जवाब देते हुए शिवी ने हंसकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, उसे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ऑफिस में सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो चिल्लाने लगता है, पर हाँ दिल का बहुत अच्छा है, अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करता है। शिवी इनडायरेक्टली आर्य की तारीफ कर रही थी। अरे सिर्फ केयर करने से क्या होता है, उसे थोड़ी फ्रीडम भी देनी चाहिए। क्या हो गया जो दो चार मिनट के लिए कोई इंसान लेट हो भी गया? शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर बस हल्की मुस्कुराहट थी। आर्य से बातें करते हुए कब हॉस्पिटल तक का सफर पूरा हो गया उसे एहसास तक नहीं हुआ। वो कैब से निकलकर उसके वार्ड की तरफ बढ़ी। ध्वनि ने वहां अपने लिए प्राइवेट रूम बुक करवाया था, वो उसी में थी। शिवी आते ही आर्य के वार्ड में चली गई। तुम तो सच में आ गई, आर्य ने मुस्कुराकर कहा। देख लो मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है कि मैं अपने खड़ूस बॉस की डांट तक सुनने को तैयार हूँ। तुम उससे मेरी बात करवा देना, फिर उसके बाद डांटना तो दूर, वो तुमसे तेज आवाज में बात तक नहीं करेगा। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। पूरी रात दोनों ने बातें करते हुए बिताई। सुबह जब ध्वनि आर्य के वार्ड में आई तो आर्य सो रहा था, तो वहीं शिवी उसके पास उसके बेड पर सिर रखकर कुर्सी लेटी लेटी थी। शिवी का हाथ आर्य के हाथ के ऊपर था। देखो तो ये लड़की कहती है कि इसके दिल में इस लड़के के लिए फीलिंग नहीं है, दोनों के दोनों ही पागल हैं। लगता है मुझे ही लव एंजल बनके इन दोनों को मिलाना होगा, वरना ये दोनों कभी अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताएंगे। ध्वनि उनके पास आई, उसने अपने मोबाइल में तेज साउंड प्ले किया और वहां रख दिया। उसकी आवाज़ सुनकर आर्य और शिवी की नींद टूटी। ध्वनि को वहां देखकर शिवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वो उन दोनों को घूर कर देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रात को तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, ध्वनि ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। तुम मुझे क्यों डांट रही हो और तुम कब से इतना स्ट्रिक्टली बात करने लगी? खुद तो आराम से प्राइवेट रूम में जाकर सो गई और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया, आर्य ने शिवी का साथ देते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर अब मैं आ गई हूँ और ये यहाँ से जा सकती हैं, ध्वनि ने रूखे तरीके से कहा। और मैं यहाँ से कब जाऊँगा? आर्य ने पूछा। तुम्हारे कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तक चुपचाप यहाँ पड़े रहो। मैंने तुम्हारी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आती ही होगी, पर उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? मैं ठीक हूँ, आर्य ने मुंह बनाकर कहा। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ, शिवी ने थकी आवाज में कहा। बाहर घूमने की वजह से उसका गला बैठ गया था और साथ ही वो काफी थकी हुई भी थी। हाँ ठीक है, जाने से पहले कोल्ड की मेडिसिन ले लेना, ध्वनि ने इतना ही कहा और शिवी को बाय बोल दिया। वहां से जाने से पहले शिवी ने हल्के से हाथ उठाकर आर्या को बाय बोला और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही आर्या ने सख्त लहजे में कहा, शिवी के सामने मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, पर तुम्हें मेरी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम अच्छे से जानती हो वो लोग कैसे हैं, उन्हें मेरी परवाह नहीं है, पर क्यों बेवजह उन्हें यहाँ बुलाकर उनका टाइम वेस्ट कर रही हो? इसके लिए भी वो दो बातें मुझे ही सुनाएंगे। तू ऐसे चिड़ क्यों रहा है? मैंने सिर्फ विक्रम जी को कॉल किया है, ध्वनि ने जवाब दिया। सिर्फ विक्रम जी के वहां आने की बात सुनकर आर्या शांत हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद विक्रम जी वहां पहुंचे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ रमनदीप जी, शौर्य और मायरा भी थे। हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी करना अलाउ नहीं है, आर्या ने उन सब की तरफ देखकर कहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ आने से कोई रोक सकता है? आशुतोष बाहर से आते हुए बोले। आर्या ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर आशुतोष ओब्रॉय उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आएंगे। आर्या की फैमिली आने के बाद ध्वनि वहां से चली गई। आर्या उन सबके एक साथ आने की वजह से और परेशान हो गया। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मैंने तुम्हें घर छोड़ने से मना किया था, मेरी देखरेख में रहते थे तो तुम्हें कभी जुकाम भी नहीं हुआ, और अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, विक्रम जी उसे देखते ही डांटने लगे। क्या ये अकेला रहता है? रमनदीप को अभी तक आर्या के घर छोड़ने के बारे में पता नहीं था। वो हैरानी से बोली, इसने घर छोड़ दिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? जरूर तुम लोगों ने बेचारे बच्चे को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है चाची जी, हम इसे घर छोड़ने के लिए क्यों कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ हम पूरी फैमिली एक साथ रहें, यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी साथ रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं इसे बाहर जाने के लिए क्यों कहूँगा? आशुतोष ने सफाई दी। और हम तो ब्रो को वापस घर भी लाने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया, मायरा बोली। शौर्य ने उसकी बात पर हामे सिर हिलाया।
तुम दोनों तो अपना मुंह नहीं खोलो तो अच्छा रहेगा। और आशु, तुमने इसे जाने के लिए नहीं कहा होगा, पर रोका भी नहीं होगा। इससे कम उम्र की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घर लेकर आओगे तो इसे कितना अजीब लगेगा, कभी सोचा है इस बारे में? तुम तो बेशर्म हो, लेकिन इसके मुंह पर तो शर्म है ना। बेचारा बच्चा अपने से कम उम्र की लड़की को अपने बाप के साथ देखता है तो क्या सोचता होगा। बस हमेशा खुद की शादी के बारे में ही सोचते रहना, कभी इसकी शादी के बारे में सोचा है? रमनदीप ने आशुतोष को अच्छी खासी डांट लगा दी। रमनदीप की बात सुनकर आर्या खांसने लगा। अब तक वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, जबकि वो एक दूसरे को आर्या के घर छोड़ने का जिम्मेदार बता रहे थे। ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं या मुझे और बीमार करने? कोई इन्हें बाहर निकाल दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। आर्या गुस्से में उन सबको घूर कर देख रहा था। अब बस भी करो तुम लोग, आर्या वैसे ही बीमार है और तुम लोग इसके सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, विक्रम जी ने उन सबको चुप करवाया। मैं कोई बीमार बीमार नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर थोड़ी देर और आपकी बकवास सुनी तो जरूर हो जाऊंगा। फॉर गॉड सेक यहां से निकल जाइए, आर्या ने चिल्लाकर कहा। आर्या के चिल्लाने पर सब चुप हो गए, लेकिन शौर्य जोर से बोला, मैंने तो पहले ही कहा था इनसे मिलने आने का कोई फायदा नहीं है, ये किसी को पसंद तक नहीं करते। यहां हम इनकी परवाह करते हुए इनका हाल पूछने के लिए आए हैं और ये हम पर चिल्ला रहे हैं। हाँ नहीं है मुझे किसी की परवाह, चलो निकलो यहां से, आर्या ने काफी बदतमीजी से उसकी बात का जवाब दिया। बहुत हो गई तुम लोगों की आपसी अनबन, मैंने तुम लोगों को आजादी दी इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों मेरा सुनना ही छोड़ दो। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। डिस्चार्ज होने के बाद तुम सीधे ओबेरॉय मैंशन में आने वाले हो आर्या, आशुतोष ने सख्त लहजे में कहा। अक्सर उन्हें किसी पर अपना फैसला थोपना होता था तब वो इसी तरह बात करते थे। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपके घर में नहीं आ सकता, आर्या ने तुरंत ही वहां जाने से मना कर दिया। मैं तुम्हारा बाप हूं, देखता हूं कैसे तुम मेरे घर में वापस नहीं आते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ आर्या, जो कहा है वो करो, आशुतोष गुस्से में वहां से जाने लगा। तभी आर्या ने पीछे से तेज आवाज में कहा, आप अच्छे से जानते हैं मुझे घर वापस बुलाने के लिए क्या करना है, आप कर पाओगे वो? आशुतोष सहित वहां खड़े सभी लोग आर्या के कहने का मतलब समझ रहे थे। पार्टी में जो भी हुआ था उसके बाद ही आर्या ने घर छोड़ा था, कहीं ना कहीं वो सब कैरन से जुड़ा हुआ था। अगर आप सच में मुझे घर बुलाना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या आप अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर से निकाल पाओगे मिस्टर ओबेरॉय? आर्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो जानता था कि आशुतोष का जवाब क्या होने वाला है। आप ऐसा कर दीजिएगा, आई प्रॉमिस मैं घर वापस लौट आऊंगा। आशुतोष एक पल के लिए वहां रुका और उसकी तरफ देखने लगा। सब कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनका कुछ न कहना सबको यही लग रहा था कि वो कैरन को कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं करेंगे, चाहे फिर सवाल आर्या के घर वापस आने का ही क्यों ना हो।